यूहन्ना 18। यह कहकर ईसा अपने शागिर्दों के साथ निकला और वादिये किद्रोन को पार करके एक बाग में दाखिल हुआ। यहूदा, जो उसे दुश्मन के हवाले करने वाला था, वह भी इस जगह से वाकिफ था, क्योंकि ईसा वहां अपने शागिर्दों के साथ जाया करता था। रहनुमा इमामों और फरीसियों ने यहूदा को रोमी फौजियों का दस्ता और बैतुल मुकद्दस के कुछ पहरेदार दिए थे। अब ये मशालें, लालटेन और हथियार लिए बाग में पहुंचे। ईसा को मालूम था कि उसे क्या पेश आएगा, चुनांचे उसने निकलकर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ईसा नासरी को। ईसा ने उन्हें बताया, मैं ही हूं। यहूदा, जो उसे दुश्मन के हवाले करना चाहता था, वह भी उनके साथ खड़ा था। जब ईसा ने ऐलान किया, मैं ही हूं, तो सब पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। एक और बार ईसा ने उनसे सवाल किया, तुम किसको ढूंढ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, ईसा नासरी को। उसने कहा, मैं तुमको बता चुका हूं कि मैं ही हूं। अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो इनको जाने दो। यूं उसकी ये बात पूरी हुई, मैंने उनमें से जो तूने मुझे दिए हैं एक को भी नहीं खोया। शमाउन पत्रस के पास तलवार थी, अब उसने उसे म्यान से निकालकर इमाम अंजाम के गुलाम का दायना कान उड़ा दिया। गुलाम का नाम मकलूस था, लेकिन ईसा ने पत्रस से कहा, तलवार को म्यान में रख, क्या मैं वह प्याला ना पीऊं जो बाप ने मुझे दिया है? फिर फौजी दस्ते, उनके अफसर और बैतुल मुकद्दस के यहूदी पहरेदारों ने ईसा को गिरफ्तार करके बांध लिया। पहले वे उसे हन्ना के पास ले गए। हन्ना उस साल के इमाम अंजाम कैफा का ससुर था। कैफा ही ने यहूदियों को यह मशवरा दिया था कि बेहतर यह है कि एक ही आदमी उम्मत के लिए मर जाए। शमान पत्रस किसी और शागिर्दों के साथ ईसा के पीछे हो लिया था। यह दूसरा शागिर्द इमाम अंजाम का जानने वाला था, इसलिए वह ईसा के साथ इमाम अंजाम के सहन में दाखिल हुआ। पत्रस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर इमाम अंजाम का जानने वाला शागिर्द दोबारा निकल आया। उसने गेट की निगरानी करने वाली औरत से बात की तो उसे पत्रस को अपने साथ अंदर ले जाने की इजाज़त मिली। उस औरत ने पत्रस से पूछा, तुम भी इस आदमी के शागिर्द हो कि नहीं? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हूँ। ठंड थी, इसलिए गुलामों और पहरेदारों ने लकड़ी के कोयले से आग जलाई। अब वे उसके पास खड़े ताप रहे थे, पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। इतने में इमाम अंजाम ईसा की पूछ गीछ करके उसके शागिर्दों और तालीम के बारे में तफ्तीश करने लगा। ईसा ने जवाब में कहा, मैंने दुनिया में खुलकर बात की है, मैं हमेशा यहूदी इबादत खानों और बेतुल मुकद्दस में तालीम देता रहा, वहाँ जहाँ तमाम यहूदी जमा हुआ करते हैं। पोशीदगी में तो मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे दरियाफ्त करें जिन्होंने मेरी बात सुनी है, उनको मालूम है कि मैंने क्या कुछ कहा है। इस पर साथ खड़े बेतुल मुकद्दस के पहरेदारों में से एक ने ईसा के मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा, क्या ये इमाम अंजाम से बात करने का तरीका है जब वह तुमसे कुछ पूछे? ईसा ने जवाब दिया, अगर मैंने बुरी बात की है तो साबित कर, लेकिन अगर सच कहा तो तूने मुझे क्यों मारा? फिर हन्ना ने ईसा को बांधी हुई हालत में इमाम अंजाम कैफा के पास भेज दिया। शमाउन पत्रस अब तक आग के पास खड़ा ताप रहा था। इतने में दूसरे उससे पूछने लगे, तुम भी उसके शागिर्द हो कि नहीं? लेकिन पतरस ने इनकार किया, नहीं मैं नहीं हूं। फिर इमाम अंजाम का एक गुलाम बोल उठा, जो उस आदमी का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, क्या मैंने तुमको बाग में उसके साथ नहीं देखा था? पतरस ने एक बार फिर इनकार किया और इनकार करते ही मुर्ग की बांग सुनाई दी। फिर यहूदी ईसा को कैफा से लेकर रोमी गवर्नर के महल बनाम प्रोटोरियम के पास पहुंच गए। अब सुबह हो चुकी थी और चूंकि यहूदी फसा की ईद के खाने में शरीक होना चाहते थे, इसलिए वह महल में दाखिल ना हुए, वरना वह नापाक हो जाते। चुनांचे पिलातूस निकलकर उनके पास आया और पूछा, तुम इस आदमी पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, अगर ये मुजरिम ना होता तो हम इसे आपके हवाले ना करते। पिलातूस ने कहा, फिर इसे ले जाओ और अपनी शरीयत अदालतों में पेश करो। लेकिन यहूदियों ने एतराज़ किया, हमें किसी को सजाए मौत देने का इजाज़त नहीं। ईसा ने इस तरफ इशारा किया था कि वह किस तरह मरेगा और अब उसकी ये बात पूरी हुई। तब पिलातूस फिर अपने महल में गया, वहाँ से उसने ईसा को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के बादशाह हो? ईसा ने पूछा, क्या आप अपनी तरफ से ये सवाल कर रहे हैं या औरों ने आपको मेरे बारे में बताया है? पिलातूस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी अपनी कौम और रहनुमा इमामों ही ने तुम्हें मेरे हवाले किया है, तुमसे क्या कुछ सरजद हुआ है? ईसा ने कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, अगर वह इस दुनिया की होती तो मेरे खादिम सख्त जद्दोजहद करते ताकि मुझे यहूदियों के हवाले ना किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। पिलातुस ने कहा, तो फिर तुम वाकई बादशाह हो? ईसा ने जवाब दिया, आप सही कहते हैं, मैं बादशाह हूँ। मैं इसी मकसद के लिए पैदा होकर दुनिया में आया कि सच्चाई की गवाही दूँ, जो भी सच्चाई की तरफ से है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने पूछा, सच्चाई क्या है? फिर वह दोबारा निकलकर यहूदियों के पास गया, उसने ऐलान किया, मुझे उसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी एक रस्म है जिसके मुताबिक मुझे ईद फसा के मौके पर तुम्हारे लिए एक कैदी को रिहा करना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहूदियों के बादशाह को रिहा कर दूं? फिर पिलातुस ने ईसा को कोड़े लगवाए, फौजियों ने कांटेदार टहनियों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रख दिया, उन्होंने उसे अर्गवानी रंग का लिबास भी पहनाया। फिर उसके सामने आकर वह कहते, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसे थप्पड़ मारते थे। फिर एक बार फिर पिलातुस निकल आया और यहूदियों से बात करने लगा, देखो मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ला रहा हूँ ताकि तुम जान लो कि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। फिर ईसा कांटेदार ताज और अर्गवानी रंग का लिबास पहने बाहर आया। पिलातुस ने उनसे कहा, लो यह है वह आदमी। उसे देखते ही रहनुमा इमाम और उनके मुलजिम चीखने लगे, इसे मसलूब करें, इसे मसलूब करें। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर मसलूब करो, क्योंकि मुझे इसे मुजरिम ठहराने की कोई वजह नहीं मिली। यहूदियों ने इसरार किया, हमारे पास शरीयत है और इस शरीयत के मुताबिक लाजिम है कि वह मारा जाए, क्योंकि इसने अपने आप को अल्लाह का फर्जंद करार दिया है। यह सुनकर पिलातुस मजीद डर गया, दोबारा महल में जाकर ईसा से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? लेकिन ईसा खामोश रहा। पिलातुस ने उससे कहा, अच्छा तुम मेरे साथ बात नहीं करते हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे तुम्हें रिहा करने और मसलूब करने का इख्तियार है? ईसा ने जवाब दिया, आपको मुझ पर इख्तियार ना होता अगर वह आपको ऊपर से ना दिया गया होता। इस वजह से उस शख्स से ज्यादा संगीन गुनाह हुआ है जिसने मुझे दुश्मन के हवाले कर दिया है। इसके बाद पिलातुस ने उसे आजाद करने की कोशिश की, लेकिन यहूदी चीख चीख कर कहने लगे, अगर आप इसे रिहा करें तो आप रोमी शहंशाह कैसर के दोस्त साबित नहीं होंगे। जो भी बादशाह होने का दावा करे वह शहंशाह की मुखालफत करता है। इस तरह की बातें सुनकर पिलातुस ईसा को बाहर ले आया, फिर वह जज की कुर्सी पर बैठ गया। उस जगह का नाम पच्चीकारी था। अरामी जुबान में वह गबत्ता कहलाती थी। अब दोपहर के तकरीबन 12 बज गए थे। उस दिन ईद के लिए तैयारियां की जाती थीं, क्योंकि अगले दिन ईद का आगाज था। पिलातुस बोल उठा, लो तुम्हारा बादशाह। लेकिन वे चिल्लाते रहे, ले जाएं इसे, ले जाएं इसे, मसलूब करें। पिलातुस ने सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब पर चढ़ाऊं? रहनुमा इमामों ने जवाब दिया, सिवाय शहंशाह के हमारा कोई बादशाह नहीं है। फिर पिलातुस ने ईसा को उनके हवाले कर दिया ताकि उसे मसलूब किया जाए। चुनांचे वो ईसा को लेकर चले गए।